कशिश और ईशान जब तक तैयार होकर नीचे आए, घर के दोनों आदमी अपने काम पर जा चुके थे। शुभ्रा और शुभेका भी स्कूल जा चुकी थीं। बड़ी मम्मी और चाची दोनों आंगन में बैठी हुई थीं। रजनी वहां नहीं थी। रजनी ने उसे परिवार के सदस्यों के बारे में बताया था, इसलिए भले ही वो किसी को पहचानती नहीं थी, पर देखकर अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल नहीं था। कशिश ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर उनकी ओर बढ़ गई, पर इससे पहले कि वो उनके पैर छुपाती, कौशल्या जी ने अपना हाथ आगे कर दिया और कठोर स्वर में बोली, जहां है वहीं रुक जाइए। कशिश के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें बड़ा बड़ा किए असमंजस भरी निगाहों से उन्हें देखने लगी। महिमा जी ने कशिश को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कौशल्या जी की ओर निगाहें घुमाते हुए बोली, दीदी देख लीजिए कैसी लड़की को ब्याह कर घर लाया है ईशान। घर की नई बहू कहीं इतनी देर तक सोई है? ये लड़की तो महारानी जैसे 9 बजे सोकर नीचे आ रही है। घर की मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं, कोई तमीज़ तहजीब और संस्कार भी नहीं इनमें। देखें तो सही, शादी के अगले ही दिन कैसे कपड़े पहनकर आई है, सिंगार भी आधा अधूमा किया है। घर की नई बहू के कहीं ऐसे लक्षण होते हैं? ये ईशान जाने कैसी लड़की को बहू बनाकर ले आया है। आपको याद है सरिता जब घर आई थी तो कैसे अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर पूजा घर में आ गई थी? उसकी मधुर आवाज़ से बनारस की सुबह हुई थी। फिर पूरे परिवार के लिए कितने पकवान बनाए थे उसने। साल घर सर पर आंचल रखती थी, आज भी अपने ससुर से पर्दा करती है वो। पर छोटी बहू को तो कोई लिहाज ही नहीं, कोई कहने वाला ही नहीं है। घर की परंपरा रीति रिवाजों की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है इनकी नज़रों में। ये तो हमारे ख़ानदान का नाम डुबाने पर लगी हैं। जाने कौन से बुरे कर्म का फल है जो ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। महिमा जी बाल्टी भर भर कर कशिश को ताने मार रही थी और बेचारी कशिश आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे उनसे अपना कसूर जानना चाह रही हो। उनकी बातें सुनकर कौशल्या जी ने तीखी नज़रों से कशिश को घूरा और मुंह बिगाड़ते हुए बोली, घर की मान मर्यादा और संस्कारों को तो दोनों भाई बहन ने तिलांजलि दे दी है। परिवार की इज्जत पर कलंक लगाने के लिए ऐसी निर्लज बहू घर लाई है। अपने पसंद की शादी है तो हम कर ही क्या सकते हैं? किसी ने शादी से पहले जब हमारी राय लेना ही ज़रूरी ना समझा तो अब हम क्यों कुछ कहेंगे? मनमौजी हो गए हैं दोनों भाई बहन। अब बहू भी ऐसी ले आए हैं जिनके अंदर कोई संस्कार ही नहीं। तो करने दीजिए जो करना चाहते हैं। ऐसे कैसे करने देंगी दीदी, हमारे घर की भी कोई मान मर्यादा है। हम बड़े हैं तो सही रास्ता हमें ही दिखाना होगा। घर की परंपराओं के टूटने से अनर्थ हो जाएगा। हम घर के बड़े हैं तो हमें ही घर की मान मर्यादा और इज्जत का ख्याल रखना होगा, महिमा जी चिंता जताते हुए बोली। उनकी बात सुनकर कौशल्या जी ने तेज आवाज़ में रजनी को पुकारा, रजनी। उनकी आवाज़ सुनकर रजनी बाहर से दौड़ते हुए अंदर आई और हड़बड़ाहट में बोली, जी बड़ी माँ। कौशल्या जी ने पहले उसे देखा फिर कशिश की ओर इशारा करते हुए नाराज़गी से बोली, छोटी बहू को कुछ सिखाया है या नहीं तुमने? किसी को भी घर ले आई हो तो कम से कम घर के तौर तरीके और रीति रिवाज से तो अवगत करवाया होता। शादी के अगले दिन ये कैसे कपड़े पहनकर आई हैं? साड़ी नहीं पहनी सो तो छोड़ो, सूट पर दुपट्टा तक नहीं लिया। अभी कल ही शादी करके घर आई है और सर पर पल्लू तक नहीं, सिंगार भी अधूरा है। और ये वक्त है नई बहू के उठने का? परिवार के सब जन काम पर जा चुके हैं, वैसे तो हम कुछ कहते नहीं, पर नई बहू के साथ कुछ रस्में होती हैं। सबके उठने से पहले उठकर पूजा करनी होती है, चूल्हा पूजन करके घर के सब लोगों के लिए खाना बनाना होता है। पर आप और आपके भाई मिलकर सब रीति रिवाज को तोड़ने पर आतुर हैं। एक तो जाने कौन से कुलगोत्र की लड़की ले आए हैं घर जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं, और आप भी उन्हें घर के रीति रिवाज से अवगत नहीं करवा रही। बेचारी रजनी को तो कुछ मालूम ही नहीं था। उनकी बातें सुनने के बाद उसने कशिश की ओर निगाहें घुमाई जिसका चेहरा एकदम लटक गया था। रजनी के कुछ कहने से पहले ही उसने मायूस उदास चेहरा बनाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ, रजनी ने उसके उदास चेहरे को देखकर प्यार से उसके गाल को छूकर कहा। फिर कौशल्या जी को देखकर बोली, हम कशिश को तैयार करके आते हैं और उन्हें सब सिखा भी देंगी। वो आकर पूजा भी कर लेंगी और खाना भी बना देंगी। अब खाना बनाकर क्या करेंगी और पूजा करने का ये वक्त होता है? जाइए तैयार कीजिए अच्छे से, घर के तौर तरीकों के बारे में बता दीजिएगा, साथ ही नई बहू को कैसे रहना चाहिए ये भी सिखा दीजिएगा और अच्छे से समझा दीजिएगा। कल सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर नीचे आएं। पहले पूजा करनी होगी, फिर चूल्हा पूजन की रस्म होगी और घर के सब सदस्यों के लिए खाना भी बनाना होगा उन्हें। पर पहले ही पूछ लीजिए, खाना बनाना आता भी है इस लड़की को या नहीं, कौशल्या जी ने तलखी भरे लहजे में कहा और कशिश को अजीब नज़रों से घूरने लगी। मुझे खाना बनाना आता है, कशिश ने उनका तंज सुनकर मुंह फुलाते हुए जवाब दिया। उसका इस तरह जवाब देना चाची जी को नागावार गुजरा। उन्होंने तुरंत कशिश पर भड़कते हुए कहा, जरा भी शर्म हया बड़ों का लिहाज बाकी है तुम में कि नहीं? ऐसे अपनी बड़ी सास को पलट कर जवाब देते हैं और कैसे बेशर्म जैसी आंखें दिखा रही है। नजर नीचे करो अपनी, नहीं तो अभी एक लप्पड़ लगाएंगे कान पर, महिमा जी ने फटकारते हुए थप्पड़ दिखाया जिसे सहम कर कशिश ने अपनी नजरें झुका ली। कशिश को बेवजह डांट पड़ते देखकर अब तक चुप खड़ा तमाशा देखता ईशान गुस्से में कुछ बोलने को हुआ, पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही रजनी ने उसे रोक दिया। ईशु, तुम्हें दुकान के लिए देर हो रही है, तुम जाओ, हम तुम्हारा खाना वहीं भेज देंगे। बात बढ़ने से रोकने के लिए एक बार फिर रजनी ने ईशान को कुछ कहने नहीं दिया। ईशान ने घर की दोनों औरतों को तीखी नजरों से घूरा और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया। रजनी ने उसके जाने के बाद गहरी सांस छोड़ी और कशिश को लेकर कमरे में चली गई। ईशान गुस्से में घर से जा चुका था। कशिश का पहला ही दिन महिमा जी और कौशल्या जी से 36 का आंकड़ा बन चुका था। रजनी ने अपनी ओर से बात संभालने की कोशिश तो की, पर कशिश तब तक अच्छी खासी डांट खा चुकी थी और ईशान भी नाराज होकर चला गया था। रजनी कशिश को लेकर कमरे में चली आई। कमरे में आते ही कशिश बिफरते हुए बोली, दीदी आप तो इतनी स्वीट हैं, पर वो दोनों बुढ़ी औरतें बहुत गंदी हैं। इतनी सी देर में इतने ताने मार दिए उन्होंने मुझे, जितने आज तक कुल मिलाकर भी मेरी मम्मी ने ताने नहीं मारे होंगे मुझे।